परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हुए, किन्तु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, अपने हुए थे पराए, प्यार किसी ने दिखाया दिखाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में मेरी जिंदगी में थे हसरतों के मेले, मेरी जिंदगी में थे हसरतों के मेले, जीते थे फिर भी अकेले, साथ किसी का जो पाया
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरे पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि पत्रस झूठे शिक्षकों के विषय में हमें बताता है और वह यह भी कहता है कि वे अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं। वे किसी पर भी कैसा भी दोष लगा सकते हैं। वे दूसरों का बुरा करते हैं। वे भोग विलास का जीवन जीते हैं। उन्हें अधर्म की कमाई अच्छी लगती है। उनकी बातों से घमंड टपकता है। देखने में वे महान दिखाई देते हैं, परंतु उनका भविष्य अंधकार है। वे मनुष्य को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। उनका अंत विनाशकारी है। परमेश्वर ने उन्हें दंड के लिए रख छोड़ा है। उनकी दशा उद्धार पाने के पूर्व से अधिक बुरी है। हमने इन्हीं बातों को पिछले अध्ययन में देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, जो इस समय आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने रेडियो के साथ, परिवार और मित्रों के साथ बैठे हैं, आप उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक आज के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, परिवार में संतान चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, और जो बीमार अवस्था में है चंगाई और छुटकारा चाहते हैं। प्रभु जी, आप उनके साथ हो लीजिए। जो पाप में जीवन जी रहे हैं उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उनकी सहायता कीजिए। आज अपने वचन के द्वारा हर एक से बोली और बातचीत कीजिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है कि वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, वे सुंदर आकर्षक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे बड़ी ही प्रभावी वाणी में प्रचार करते हैं। ये वे ही लोग हैं जो झूठे शिक्षक हैं। लिखा है लुचपन के काम, शारीरिक अभिलाषा, उनका धर्म आंखों को, कानों को, नाक को लुभाता है। एक प्रचारक ने मुझे बताया कि आराधना से पूर्व वह आराधनालय में सुगंध का छिड़काव करवाता है कि वातावरण सुगंधित रहे। निश्चय ही आराधनालय को अच्छा दिखना चाहिए, संगीत भी अच्छा होना चाहिए। मुझे सुगंध से बैर नहीं, परंतु हमें उस पर भी निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि वे शारीरिक अभिलाषा है। परंतु पत्रस इससे बढ़कर के कहता है, झूठे शिक्षकों को दोष देते हुए, लुचपन के कामों द्वारा, अर्थात यौनाचार की अभिलाषा। पत्रस अब वास्तव में कटाक्ष करने पर आ गया है। आइए हम पढ़ें दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 19 पद। लिखा है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। ये झूठे शिक्षक तो स्वयं ही अभिलाषाओं के दास हैं, तो वे श्रोताओं को क्या स्वतंत्रता दिलवाएंगे। लिखा है, जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। तो यह है उनका चित्रण। वे स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु स्वयं नहीं जानते कि स्वतंत्रता क्या है। आज ऐसे ही लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और लोग उसके दीवाने हैं। वे उन्हीं लोगों के पीछे चलते हैं, परंतु नहीं जानते कि उनका विनाश है। दूसरा पत्रस 2:20 में लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। ये भ्रष्ट जन प्रभु यीशु के विषय जानते हैं। वे सत्य को जानते हैं, परंतु उन्हें सत्य से लगाव नहीं है। वे अपने अंगीकार का अब इनकार करते हैं। वे अपने भ्रष्ट स्वभाव के दास बन चुके हैं। और मैं अनेक लोगों से यह भी सुनता हूं, मैं अति धर्मी हूं, मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं। हम तो नहीं मानते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, परंतु हमने प्रेम और भाईचारे की कमी नहीं है। हमारा आराधनालय बड़ा सुंदर है और हमारी आराधना में आनंद से भरकर गीत गाते हैं। ऐसे लोग संसार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुके हैं, परंतु समाचार में अपराध और अराजकता पढ़कर या सुनकर भयातुर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे संसार के भ्रष्टाचार से तो निकल आए हैं, परंतु सड़ाहट से बच नहीं सकते। इसलिए पत्रस कहता है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। ऐसा नहीं कि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, उन्होंने सुसमाचार अवश्य सुना है। मुझसे किसी ने कहा, मैं आपके बाइबल अध्ययन के रेडियो प्रसारण को लगभग प्रतिदिन सुनता हूं, परंतु उसने कहा कि वह विश्वास नहीं करता है। वह तो परमेश्वर के अस्तित्व पर भी संदेह करता है। वह सुसमाचार को जानता है। किसी ने मुझसे कहा, आप हॉकी खेलते समय कभी कभी समय पाकर लोगों को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं सैकड़ों बार सुसमाचार सुना चुका हूं, अब और अधिक सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रस कहता है कि फिर उसमें संसार की अशुद्धता में फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में पत्रस कलीसिया में आने वाली मसीही विरोधी शिक्षाओं के विषय अति निश्चयता के साथ कहता है कि ये झूठे शिक्षक चोरी और विद्रोह करते हैं और चोरी छिपे कलीसिया में घुसकर परमेश्वर के वचन के अतिरिक्त कुछ और शिक्षा देते हैं। वे अपने स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। वे प्रभु यीशु की अपेक्षा अपना ही महिमान्वन करना चाहते हैं। वे परमेश्वर के वचन का यदा कदा संदर्भ देकर अपनी झूठी शिक्षाओं को पवित्र आभा से सजाते हैं। वे बड़े बड़े नकली शब्द काम में लेते हैं। वे श्रोताओं पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रभाव डालना चाहते हैं कि लोग उन्हें पैसा दें। वे दावा करते हैं कि वे श्रोताओं का मन फिरा देंगे। मैं तो इस प्रकार की बातों से डरता हूं। आपको अलौकिक कृत्यों जैसे चंगाई, चमत्कार आदि के कामों को जांचना है। जी हां, झूठे शिक्षकों में कुछ की पहचान यह भी है कि वे अभिलाषाओं और पाप का जीवन जीते हैं। हम इन झूठे शिक्षकों से लड़ नहीं सकते। मैं तो केवल उनका पर्दाफाश करना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर उनका पर्दाफाश करेगा और उन्हें दंड भी देगा। दूसरा पत्रस दो अध्याय के 21 पद में लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। अंत में अब पत्रस कहता है कि भला होता कि वे धार्मिकता का मार्ग ही नहीं जानते, अपेक्षा इसके कि सुसमाचार को ग्रहण करके उससे विमुख हो जाएं। मैं डॉक्टर एसी गॉबलिन की एक बात को प्रायः काम में लेता हूं। मैं अपने प्रचार के अंत में कहता हूं, मित्रों, आज आप यहां उद्धार से रहित आए थे और उद्धार से रहित ही जा रहे हैं। मैं आपका सबसे बड़ा बैरी हूं, क्योंकि आपने सुसमाचार सुन लिया है और अब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने पर यह नहीं कह सकते कि आपने सुसमाचार नहीं सुना है। आपने सुसमाचार सुना है और आपके लिए परमेश्वर का दंड एक पृथ्वी के अंधकारवासी अन्य जाति से कहीं अधिक भयानक होगा, इसलिए आप सचेत रहें। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस दो अध्याय उसका 22 पद, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। पत्रस झूठे शिक्षकों को कुत्ता कहता है। एक यहूदी के लिए कुत्ता सबसे बुरा जानवर था। कुत्ता अपनी छांट की ओर, पत्रस के मन में भजन संहिता 26 उसके 11 पद का विचार है कि वे अपने अपरिवर्तित मन की दशा में लौट आए हैं। कहता है, नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मेरे मित्रों, आपने उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को सुना है। सुअर का दृष्टांत आपने सुना होगा। पत्रस सुनाता है, यह प्रभु यीशु के दृष्टांत पर आधारित है। उड़ाव पुत्र की कहानी, जिसे हम लुकार्ची सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 32 पद में पढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आप उड़ाव पुत्र के दृष्टांत से सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, परंतु मैंने एक प्रचारक को उड़ाव पुत्र की कहानी सुनाकर सुसमाचार प्रचार करते हुए सुना था। उस प्रचारक ने ऐसे रूपक काम में लिए जो मुझे आज भी याद है। वह उड़ाव पुत्र को गंदी से गंदी पाप की जगहों में ले तो गया, और उस रात सब भक्तों ने प्रचारक के प्रचार में अपने पाप को देखा। वह एक अत्यधिक प्रभावशाली संदेश था। मैं उस रात पहली बार वेदी के निकट गया था और मुझे विश्वास है कि अन्य अनेकों का उद्धार हुआ था। उस दृष्टांत की व्याख्या करके मुझे किसी ने कभी भी नहीं समझाया और मेरा जीवन प्रकट कर रहा था कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु मेरा मन खुल गया था। मैं अपने आप को देख रहा था। उड़ाव पुत्र की कहानी में पापी का पुत्र बनना ही नहीं है, परंतु पुत्र का पापी बनना दिखाया गया है। एक धनवान मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटा पुत्र परदेश जाना चाहता था और डॉक्टर स्ट्रीटर इसे रिश्तेदारी का पाप कहते हैं, अर्थात दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं, सुनाई देते हैं। मेरे विचार में पाप की मुख्य लालसा है रहस्य। एक कहावत है, दूसरे की थाली में घी दिखाई देता है। यही इस युवक की समस्या थी और बहुत सारे युवकों की भी यही समस्या आज है। अतः वह बहुत पैसा लेकर अपने घर से चल पड़ा। परदेश में उसे अनेक मित्र मिले। उसने भोग विलास में सब पैसा उड़ा दिया और अंत में एक सुअर पालने वाले के पास नौकरी करने के लिए चला गया। प्रभु यीशु यह बात सुनकर चुंगी लेने वालों और फरीसियों की मृकुटी तन गई, क्योंकि एक यहूदी युवक इससे अधिक नहीं गिर सकता था। वह तल में पहुंच गया था, इतना नीचे गिर गया था। वह नशा करता था, व्यभिचार करता था और बहुत सारे ऐसे काम करता था जो यहूदी समाज के लिए अच्छा नहीं था। वह सुअरों के बाड़े में था और उनका ही भोजन स्वयं खा रहा था। मेरे मित्रों, इस दृष्टांत की मुख्य शिक्षा पापी का उत्थान नहीं है। यहां मुख्य विचार है कि पिता पापी को उबारता ही नहीं है, पाप करने वाले पुत्र को फिर से अपना लेता है। किसी ने स्वर्गीय डॉक्टर हेरी रीमर से पूछा, यदि वह युवक सुअरों के बाड़े में मर जाता तो क्या होता? डॉक्टर रीमर ने कहा, यदि वह सुअरों के बीच भी मर जाता तो वह सुअर नहीं होता, वह एक पुत्र था। जी हाँ, घर छोड़ते समय वह एक पुत्र था, परदेश जाकर भी वह एक पुत्र ही था, पाप में निर्वाह करते समय भी वह एक पुत्र था, और सुअरों के मध्य भी वह एक पुत्र था। अब क्योंकि वह एक पुत्र था, उसने एक दिन कहा, जो कोई भी सुअर नहीं कह सकता है, मेरा पिता वहां एक बड़े घर में रहता है और उसके सेवक का जीवन मुझसे भी कहीं अच्छा है, मैं तो उसका पुत्र हूं परंतु सुअरों का सा जीवन जी रहा हूं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। यह उसके मन में आया। सुअर ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा और नहीं करेगा यदि वह विपरीत दिशा में ना चले। जी हां, वह सुअर के बाड़े के विषय में ही कहेगा, अब उसका पिता उसके प्रति क्या करेगा? मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो उसे पत्थरवाह करना था, जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 18 से 21 पद में पढ़ते हैं, परंतु वह बच गया। क्यों? उसने अपने पिता से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे पिता, मैंने परमेश्वर और तेरे विरोध में पाप किया है। होना तो यह था कि पिता एक सेवक से कहता, जाकर बेंत ला, मैं इसे अच्छा सबक सिखाता हूं, इसने मेरा पैसा उड़ाया है, मेरा नाम उसने खराब किया है, बदनाम किया है, समय गंवाया है और पाप में रहा है, और अब मेरे पास लौट आया है, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। परंतु पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसे तो परदेश में दंड मिल गया था। सब उड़ाव पुत्रों के साथ ऐसा ही होता है जब वे लूट पीट कर अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस आते हैं, तब खुशी मनाई जाती है, उन्हें संवारा जाता है, आनंद पिता के घर में होता है, सुअरों के बाड़े में नहीं। यहां पर पत्रस कहता है कि सुअर को नहला दें, फिर भी वह कीचड़ में लौट जाएगा। मेरे प्रियो, हम इस दृष्टांत में कुछ और जोड़ देते हैं। एक छोटे सुअर ने उड़ाव पुत्र से कहा, तू यहां का इतना अच्छा कीचड़ और गंध छोड़कर अपने पिता के पास जाना चाहता है, मैं सोचता हूं कि मुझे भी तेरे साथ चलना चाहिए। उड़ाव पुत्र ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलना चाहता है तो तुझे वहां साफ रहना होगा। मेरे प्रियो, घर पहुंचने पर पिता ने उसे गले लगाया तो उसकी दुर्गंध उसे अच्छी नहीं लगी। उसने अपने सेवकों से कहा कि उसे नहलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं। उन्होंने उस छोटे सुअर को भी अच्छी तरह नहलाकर उसके गले में एक गुलाबी फीता बांधा। एक दो दिन तो वह सुअर बहुत खुश था, परंतु एक दिन उसने बड़े दुख के साथ उड़ाव पुत्र से कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता है। उड़ाव पुत्र ने कहा, यहां आकर तो हमारे ठाट हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तू घर जाना क्यों चाहता है? सुअर ने कहा, मुझे इन अच्छे बिस्तरों में नींद नहीं आती है, मुझे तो कीचड़ में ही आराम मिलता है। उड़ाव पुत्र ने कहा, यहां तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां सुअरों का बाड़ा नहीं है, यहां तो बड़े मकान में और बड़े स्थानों में खाना खाना पड़ता है। खाने का आनंद तो तब आता है जब हम सब उसमें कूद कर खाना खाएं। उड़ाव पुत्र ने कहा, यहां ऐसा नहीं हो सकता है। उस सुअर ने कहा, मैं तो अपने पिता के घर जाना चाहता हूं। अतः वह घर की ओर चल पड़ा। उसके पिता ने उसे देखा और वह कीचड़ से सना हुआ भाग कर आया और अपने पुत्र को गले लगाया। उस छोटे सुअर ने कहा, पापा, आज मैं बहुत खुश हूं कि घर आ गया। आप जानते हैं वह क्यों खुश था? क्योंकि वह एक सुअर था और उसे कीचड़ पसंद है, क्योंकि उसके रहने का स्थान वही है। और उड़ाव पुत्र के रहने का स्थान सुअर का बाड़ा नहीं, उसका पिता का घर था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम संसार के उन गंदगियों में नहीं, परंतु अपने पिता के घर में पवित्रता में, स्वच्छता में अपने जीवन को जिएं, ताकि हम उस भयानक दंड से, उस मृत्यु से बच जाएं। मेरे प्रियो, आज यहां पर हम सबको निर्णय लेना है कि हम किसके समान अपना जीवन जिएं, उस कीचड़ में रहे सुअर के समान या उस उड़ा पुत्र के समान जो वापस अपने मनों को फिराकर पिता के घर में आया। आज हमें इसको सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय लेंगे और इसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
चुन रखा था मुझको तूने अपने।